जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदना ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 निदाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे श्री हरि नाम संकीर्तनम के ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम के श्रील प्रभुपाद के हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा अध्याय दूसरा। अध्याय का शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण और श्लोक संख्या 12। कृपया दोहराइए। यन्मर्त्य लीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः परं पदं भूषण भूषणांगम् यन्मर्त्य लीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः परं पदं भूषण भूषणांगम् यन्मर्त्य लीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः परं पदं भूषण भूषणांगम्। शब्दार्थ यत् उनका जो नित्य रूप मर्त्य मर्त्य जगत लीलोपैकम लीलाओं के लिए उपयुक्त स्वयोग माया बलम अंतरंगा शक्ति का बल दर्शयता अभिव्यक्ति के लिए गृहीतम ढूंढ निकाला विस्मापनम अद्भुत स्वस्य अपना च तथा सौभगर्धे ऐश्वर्यवान का परम परमा पदम गंतव्य भूषण आभूषण भूषणांगम आभूषणों का अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। तात्पर्य, वैदिक स्रोतों के अनुसार नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम भगवान भौतिक जगत में समस्त ब्रह्मांडों के भीतर के अन्य सारे जीवों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। वे समस्त जीवों में प्रधान है। धन बल यश सौंदर्य ज्ञान अथवा त्याग के क्षेत्र में न तो कोई उनके समकक्ष है न उनसे बढ़कर। जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में थे तो वे मनुष्य प्रतीत होते थे, क्योंकि वे मर्त्यलोक की अपनी लीलाओं के लिए उपयुक्त रूप में प्रकट हुए थे। वे मानव समाज में अपने चतुर्भुजी वैकुंठ स्वरूप में प्रकट नहीं हुए, क्योंकि यह स्वरूप उनकी लीलाओं के उपयुक्त न होता। किंतु मनुष्य के रूप में प्रकट होते हुए भी कोई व्यक्ति विविध षडैश्वर्यों में से किसी एक में भी न तो उनके तुल्य था न है। हर व्यक्ति इस जगत में अपने ऐश्वर्य के प्रति न्यूनाधिक गर्वित रहता है, किंतु जब भगवान कृष्ण मानव समाज में थे तो वे ब्रह्मांड में अपने समस्त समकालीन व्यक्तियों से बढ़कर थे। जब भगवान की लीलाएं मनुष्य को दृष्टिगोचर होती है तो वे प्रकट कहलाती है, और जब वे दृष्टिगोचर नहीं होती तो अप्रकट कहलाती है। वस्तुतः भगवान की लीलाएं कभी नहीं रुकती, जिस तरह सूर्य कभी आकाश को नहीं छोड़ता। सूर्य सदैव आकाश में सही कक्षा पर बना रहता है, किंतु हमारी सीमित दृष्टि में वह कभी दिखता है तो कभी ओझल रहता है। इसी तरह भगवान की लीलाएं सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती है। जब कृष्ण द्वारका के दिव्य धाम से अंतर्धान हो गए तो यह वहां के लोगों के आंखों से उनका ओझल होना ही था। इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनका दिव्य शरीर, जो मर्त्य लोक की लीलाओं के लिए उपयुक्त था, वैकुंठ लोक में उनके विभिन्न अंशों से किसी तरह निकृष्ट था। भौतिक जगत में प्रकट होने वाला उनका शरीर इस बात में सर्वोत्कृष्ट है कि मर्त्य लोक में उनकी लीलाएं वैकुंठ लोक में प्रदर्शित उनकी कृपा से बढ़कर है। वैकुंठ लोक में भगवान मुक्त या नित्य मुक्त जीवों के प्रति ही दयालु होते हैं, किंतु मर्त्य जगत की अपनी लीलाओं में वे उन पतित आत्माओं पर भी दयालु होते हैं जो नित्यबद्ध है। मर्त्य लोक में अपनी अंतरंगा शक्ति या योग माया के द्वारा प्रदर्शित षडैश्वर्य वैकुंठ लोक तक में दुर्लभ है। उनकी समस्त लीलाएं किसी भौतिक शक्ति द्वारा नहीं अभी तो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वृंदावन में उनकी रासलीला की अनुपमता तथा 16,000 पत्तियों के साथ उनका गृहस्थ जीवन वैकुंठ में नारायण के लिए भी आश्चर्यजनक है, और इस मर्त्यलोक के अन्य जीवों के लिए भी निश्चित रूप से ऐसा ही है। उनकी लीलाएं भगवान के अन्य अवतारों के लिए भी, यथा श्री राम नरसिम्हा तथा वराह के लिए भी आश्चर्यजनक है। उनका ऐश्वर्य इतना सर्वोत्कृष्ट था कि उनकी लीलाओं की प्रशंसा वैकुंठ के स्वामी द्वारा भी की गई, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषये नमः। करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा ना कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के रविवार या प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में स्वागत है। तो मैं स्वयं बहुत आनंद का अनुभव करता हूँ। पिछले कुछ महीने यात्रा के कारण पूना के बाहर था, लेकिन अभी आप सबके साथ आपके संग में फिर से उपस्थित होने का बहुत आनंद का अनुभव है। वैसे तो मैं कोई बहुत बड़ा प्रचारक वगैरह नहीं हूँ, लेकिन इन दिनों यात्रा अन्य अन्य जगह पे भारत में ही खास करके यात्रा करके कुछ भागवत सिखाने का और कुछ भागवत के ऊपर चर्चा करने का अवसर प्रदान हो रहा है। तो मुझे एक साक्षात्कार जरूर मिला कि जिस प्रकार के श्रोता हमारे NVCC मंदिर में है, उस प्रकार के श्रोता बड़े दुर्लभ है अन्यत्र। जिस प्रकार की गंभीरता और जिस प्रकार का उत्साह यहाँ के श्रोतागण में दिखाई पड़ता है, वो बड़ा दुर्लभ है। तो इसलिए मैं खुद स्वयं थोड़ी अभी, क्योंकि बाहर कुछ यात्रा कर रहा हूँ, तो समझ पा रहा हूँ कि कितना ये दुर्लभ अवसर है। इस प्रकार से गंभीर भक्तों में, गंभीर यानी भक्ति में गंभीर भक्तों के साथ भागवत के ऊपर चर्चा करने में, क्योंकि वक्ता और श्रोता के बीच में एक्चुअली श्रोता का ही महत्व ज्यादा है। क्योंकि अगर मानिए वक्ता अंतिम समय पे आ नहीं पाता है, तो किसी अन्य व्यक्ति को वक्ता करके बिठा देंगे और फिर प्रवचन जो है वो जारी रहेगा। लेकिन मानिए श्रोता ही नहीं आए, तो हो सकता है कक्षा जो है वो कैंसिल करनी पड़े ऐसे। तो इसलिए श्रोता का अपना महत्व है। एक सुभाषित कहता है संस्कृत में, किम करिष्यन्ति वक्तारः यत्र श्रोता न विद्यते, नग्न क्षपण के देहे रजकः किम करिष्यति। वो कहता है किम करिष्यन्ति वक्तारः, वक्ता लोग क्या करेंगे यत्र श्रोता न विद्यते, जहां पे श्रोता ही नहीं है उनका क्या काम है। तो इसको बताने के लिए फिर दृष्टांत दिया है। ये तो सिद्धांत हुआ, अभी दृष्टांत क्या। नग्न क्षपण के देशे रजकः किम करिष्यति। क्षपणक कहते हैं साधु को, क्षप धातु से, क्षपणक यानी साधु। तो जहां पे सारे नागा साधु हो, वहां पे धोबी का क्या काम है, है कि नहीं। सारे नग्न साधु लोग हैं, तो वहां पे भले ही बड़ा एक्सपर्ट धोबी है, कपड़े अच्छे बच्चे धोता है, लेकिन ये वस्त्र ही नहीं पहनते, तो कहां जाके क्या करेगा, रजकः किम करिष्यति। तो उसी प्रकार से वास्तविक एक्चुअली उचित श्रोता जो है वो एक वक्ता के लिए और श्रोता के लिए, दोनों के लिए बहुत लाभदायी होता है, कि जिससे कृष्ण कथा में अभिनिवेश प्राप्त हो। अर्थात वक्ता का तो ये भाव नहीं होता है कि अगर श्रोता होंगे तो तभी मैं कुछ भागवत के ऊपर चर्चा करूंगा। ये तो कृष्ण कथा का गुण ही है कि वो सभी को शुद्धिकरण, सभी का शुद्धिकरण करता है, सभी को पावन करता है, है कि नहीं। जैसे हम वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम प्रोच्छक्रम श्रोतृंस तत्पाद सलिलम यथा कहा है। श्रीमद् भागवत यानी भगवान वासुदेव कृष्ण से संबंधित जो प्रश्न है वो तीनों को शुद्धिकरण करता है, वक्तारम प्रच्छकम श्रोत्र। जो वक्ता है, जो प्रश्न पूछने वाला है श्रोता, और फिर बाकी जो अन्य सुनने वाले हैं उन सबको। और चक्रवर्ती ठाकुर विशेषता बोलते हैं यथा पूर्वम श्रेष्ठम, वो कहते हैं कि इसमें भी क्रम है, कौन सबसे ज्यादा शुद्धिकरण किसका होता है। तो यथा पूर्वम, जिस क्रम से बोला गया है उस क्रम से शुद्धिकरण होता है। तो वक्ता जो है उसका सबसे ज्यादा शुद्धिकरण होता है, जो श्रोता है उसका थोड़ा कम, और फिर जो अन्य श्रोता नहीं, दूसरा जो है प्रच्छकम, जो पृष्ठ प्रश्नकर्ता कर रहा है वो, और फिर अंत में श्रोता, ऐसे। तो अर्थात इसका मतलब जब ये बात कही जा रही है तो खास करके वक्ता के उचित भाव को प्रदान करने के लिए कहा जा रहा है कि वो स्वयं के शुद्धिकरण के लिए पहले तो बोल रहा है, न कि अभी सुनिए मुझसे और आत्मरंजन एनलाइटनमेंट प्राप्त कीजिए, ऐसे भाव से नहीं। लेकिन वो सबसे ज्यादा चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो खुद बेनिफिट होता है उसका, और फिर अन्य ऐसे। तो वो उसको उस नम्रता के भाव प्रदान करने के लिए वह बात कह रहे हैं इस प्रकार से। वक्त्रादीन त्रीन पुरुषान यथा पूर्वम श्रेष्ठम, ऐसी बात कहते। तो आज की चर्चा में खास करके मैं तीन मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। पहला है कि कैसे कृष्ण भावनामृत जो है वो केवल सांस्कृतिक स्तर पे नहीं, बल्कि कृष्ण भावनामृत जो है वो हमारे जीवन में आध्यात्मिक स्तर पे विराजमान होना चाहिए। खास करके भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य शिक्षामृत में यह बात कहते हैं। दूसरा मुद्दा मैं कहना चाहूंगा भावनाओं की अनिवार्यता। जब हम रसिक श्रोता या रसिक भागवत के छात्र बनने की बात करते हैं तो उसमें कैसे भावना जो है, कितनी भावनाएं हम कृष्ण में कृष्ण के चरणों में रख रहे हैं, वो भावनाओं की अनिवार्यता जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अंत में चर्चा करेंगे कि कैसे भागवत का कृष्ण का प्रस्तुतिकरण जो है, भागवत में जो भगवान श्री कृष्ण का प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन, वो जो है रसिकता की परमोच्चता है, रसिकता की परमोच्च सीमा है। तो इन तीन मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो जैसे हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम हमें कहता है कि हर एक ने भागवत के रस का पान करना चाहिए। निगम कल्पोतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। पिबत, पियो भागवतम, भागवत को रसमालयम, आलयम, जहां तक लय है आलयम तब तक भागवत का श्रवण करो। तो इस लय की व्याख्या करते हैं अलग अलग आचार्य, आलयम लय पर्यंत। तो एक अर्थ होता है कि लय का अर्थ होता है मोक्ष। तो मोक्ष के परे भी जो भागवत की कथा है वो सारे साधु जो है महात्मा है उसका श्रवण करते हैं। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथ प्योरुक्रमे कुर्वंती अहेतु किम भक्ति मिथम भूत गुणो हरि ही। तो भगवान की कथा जो है वो मोक्ष पर्यंत क्या मोक्ष के परे भी सुनो, आलयम। या फिर लय से दूसरा अर्थ होता है प्रलय। तो अष्ट सात्विक विकारों में प्रलय ये अंतिम विकार है। तो प्रलय यानी मूर्छा, फेंटिंग। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं तब तक भागवत सुनो, तब तक रसपान करो जब तक मूर्छित नहीं हो जाते। और जब मूर्छित हो जाएंगे तो सुन नहीं पाएंगे, लेकिन मूर्छा से उठने के बाद फिर से पान करना कंटिन्यू करो इस प्रकार से। तो ये एक अर्थ है लयम का। और तीसरा लय का अर्थ है वो कहते हैं लय यानी आलिंगन। तो तब तक श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए जब तक इतना भगवान प्रसन्न हो कि आपको आलिंगन ना कर दे, गाढ़ आलिंगन, कि ये इतना भागवत श्रवण किया है कि भगवान उनसे प्रसन्न होके उनको आलिंगन कर दे इस प्रकार से। तो इसलिए मुहुरहो रसिका भुवि भावुक, हे रसिक जन, हे भावुक जन, आप जो है इस प्रकार से भागवत का श्रवण कीजिए। अभी हमारा अनुभव कुछ और है कि नहीं, आलयम मोक्ष पर्यंत और उसके परे भी हम लोग अभी 9:15 हो गया तो फिर सोचने लगता है 9:15 हो गया, ब्रोजी को टाइम पता है कि नहीं, है कि नहीं। अर्थात समय का जो प्रतिबंध है वो होना चाहिए, स्वाभाविक है कि समय, बिकॉज अन्य अन्य सेवाएं हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि खास करके मेरे जैसे श्रोता के लिए बहुत बार 9:15 यानी बस हम लोग जो है बस भागवत खत्म, अभी उठना चाहिए इस प्रकार से। तो मोक्ष पर्यंतम और उसके परे ये बात तो काफी दूर है। और फिर मूर्छा तो आ जाती है लेकिन कुछ किसी अन्य कारण से, लेकिन मूर्छित हो जाते हैं, फेंटिंग हैपन्स, लेकिन वो कुछ अन्य कारण से आ जाता है। और आलिंगन कौन करता है ये तो सबको पता ही है, निद्रा देवी आलिंगन करती है। अरे तो हमारी बद्ध स्थिति में जो भागवत कह रहा है, उपदेश कर रहा है, उससे तो हम काफी परे है। लेकिन वही है कि उसका विधि भी वही है कि भागवत का श्रवण करते रहे ऐसे। तो खास करके गंभीर भक्तों के अंतर्गत ये प्रश्न निश्चित रूप से आना चाहिए कि बाह्य रूप से तो भक्ति के अंगों का स्वीकार किया है, लेकिन क्या भक्ति के रस का पान हो रहा है? उस मार्ग पे क्या हम बढ़ रहे हैं? हम में से अधिकांश लोग जो है भक्ति के अंगों को स्वीकार किए हैं। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री गौनिता की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, तो निश्चित रूप से किए हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या वो रस जो है भक्ति का, उस रस के प्रति हम कितने लालयित है, उसका कितना पान कर रहे हैं? तो रस तो बहुत बड़ा विषय है, आज मैं वो चर्चा नहीं कर रहा हूं। रसशास्त्र ये बहुत बड़ा विषय जो है, शिल रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु एवं उज्ज्वल नीलमणि में इसका बड़ा ऊहापोह किया है। एक्चुअली श्रीमद् भगवान के चरणों में भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत सारे पिछले आचार्यों ने भी की थी, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी का ये विशेष योगदान है कि उन्होंने इस भावनाओं की अभिव्यक्ति में रसशास्त्र का उपयोग कर लिया। रसशास्त्र जो है, खास करके भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आदि, ये बहुत प्राचीन विषय है, लेकिन उसमें जो चीजें है, कार्य कारण सहकारी या फिर आलंबन हो, उद्दीपन हो, ये जो रस की अन्य अन्य परिभाषाएं हैं, उसको लेके श्रीमद् भागवत के लीलाओं को, उसको लेके भक्ति के तत्व ज्ञान को प्रस्तुतिकरण जो है, ये श्रील रूप गोस्वामी ने किया है पहली बार। तो ये विशेष बड़ा योगदान है। उसके पहले रसशास्त्र तो भौतिक रसों में उसकी चर्चा होती थी, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी ने उसको आध्यात्मिक रसों में उसकी चर्चा जो है उसको किया। तो जैसे रस, तो खास करके भगवान के प्रति जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को एक जनरल, एक सीधे तरीके से हम अगर समझ सकते, तो उन भावनाओं को श्रील रूप गोस्वामी ने रस के रूप में परिभाषित किया है। भगवान के प्रति जो भावनाएं होती है हमारे हृदय में, उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। तो अभी रस की बात करें तो फिर भौतिक रस भी अपना रस है कि नहीं? भौतिक रस में भी लोग जो है डूबे रहते हैं। ऐसे जैसे भारत में लोग बहुत ज्यादा आसक्त है क्रिकेट में, है कि नहीं? तो क्रिकेट में रस प्राप्त करते हैं, कुछ खेल जैसे क्रिकेट आदि ऐसे। तो अभी क्रिकेट में इतने पागल होते हैं लोग, खास करके भारत में। अभी वही आप अमेरिका के लोग देखोगे तो बोलेंगे, अरे ये क्या है, ये कैसा खेल है, लोग क्या इसके प्रति आसक्त है। लेकिन उनका अपना रस जो है भौतिक रस, वो किसी अन्य खेल में होता है कि नहीं? जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ब्रिटिश लेखक थे, तो उनका बड़ा प्रसिद्ध वक्तव्य है क्रिकेट के बारे में। तो कहते हैं कि 11 मूर्ख लोग एक ही गेंद के पीछे दौड़ रहे और 11,000 मूर्ख लोग उनको देख रहे हैं। तो वैसे मुझे क्रिकेट के दर्शकों से कोई मेरा विरोध नहीं है उनसे, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि देखिए, भक्तिविनोद ठाकुर इसको कहते हैं चैतन्य शिक्षामृत में, भौतिक रस में किसी को जो अच्छा लगे एक व्यक्ति को, वो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा। उसमें सापेक्षता है, देयर इज अ रिलेटिविटी इन मंडेन रसेस। तो अगर आप किसी चीज को पसंद करते हो और दूसरा व्यक्ति, जैसे यहां पे क्रिकेट का उदाहरण दे रहा था, वो पसंद नहीं करता है, तो वो बोलेगा, अरे तुम्हें रस नहीं है इसमें, क्या तुम रसिक नहीं हो, इस प्रकार से। तो भौतिक रसों में सापेक्षता है, लेकिन आध्यात्मिक रस जो है उसमें सापेक्षता नहीं होती, वो निरपेक्ष है। आध्यात्मिक यानी इट्स एब्सोल्यूट। तो किसी एक को रस प्राप्त हो रहा है और दूसरे को नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। मतलब वो गुणधर्म नहीं है रस का। हो सकता है साधक में कमी हो, इसके कारण वो रस प्राप्त नहीं कर रहा हो, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ये कहते हैं कि जो भक्ति है, उस भक्ति को अगर हम भौतिकतावादी, जैसे कोई धार्मिक लोग होते हैं, पायस मटेरियलिस्ट, आपने ये संज्ञा सुनी होगी, टर्म सुनी होगी, तो वो कहते हैं कि कैसे भौतिकतावादी जो धार्मिक लोग है, धर्म का तो पालन करते हैं लेकिन बड़े भौतिकतावादी है, तो उनमें ये जो रस है भक्ति का, वो सापेक्ष होता है। ये जो रस है वो हो सकता है केवल संस्कृति के स्तर पे हो, इट्स अ कल्चरल प्लेटफॉर्म ऑन विच दे आर। तो संस्कृति के स्तर पे जैसे कोई खेल अच्छा लगता हो, या जैसे कोई पिकनिक अच्छा लगता हो, या अन्य अन्य कोई चीजें अच्छी लगती हो, वैसे ही उनके जीवन में एक पार्ट जो है वो भक्ति भी है, भक्ति अच्छी लगती है कभी ऐसे। और क्यों कर रहे हैं? हाँ, हमारी संस्कृति है, मेरे दादा ने किया, मेरे परदादा ने किया, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। तो वो ठीक है, कोई नास्तिकतावादी व्यक्ति है उससे अच्छा तो सांस्कृतिक स्तर पे भी क्यों ना हो, इस प्रकार के धर्म का पालन हो। लेकिन समस्या ये है कि सापेक्षता, जो आज अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे दादा ने किया, परदादा ने किया, हमारी ये संस्कृति ही है। संस्कृति बदलने में कितना समय लगता है? संस्कृति तो बदलती ही रहती है, भाषा बदलती है, संस्कृति बदलती है, लोगों की जीवन शैली, केशभूषा, वेशभूषा, सब कुछ बदलता रहता है कि नहीं? हम लोग देखते हैं, अभी हाल ही में मैं वृंदावन में था, तो केशभूषा और वेशभूषाएं भक्तों में भी दिखाई पड़ती है बहुत सारी। हालांकि प्रभुपाद ने तो एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल दिया सबको, लेकिन वो दिखाई पड़ती है। एक बार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में थे, ये सैन फ्रांसिस्को में थे प्रभुपाद, और पहली बार सैन फ्रांसिस्को आ रहे थे, तो वहां पे मुकुंद महाराज जो थे तब, मुकुंद प्रभु, उनकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी, इससे दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई थी ऐसे। और फिर न्यूयॉर्क के सारे भक्त तो एकदम क्लीन शेव्ड रहते थे, एकदम बढ़िया से ऐसे। तो जब प्रभुपाद वहां पे पहुंचे तो देखा मुकुंद प्रभु जो है दाढ़ी में है वगैरह ऐसे, तो प्रभुपाद ने कहा आप एकदम साधु की तरह लग रहे हो मुकुंद प्रभु को ऐसे। तो मुकुंद प्रभु को लगा, अरे प्रभुपाद गुणगान कर रहे हैं मेरा, तो बड़े खुश हो गए, थैंक यू प्रभुपाद, ऐसे बोले एकदम। और फिर लेकिन उन्होंने देखा कि प्रभुपाद के साथ आए हुए भक्त या अन्य भी सारे भक्त सारे चकाचक एकदम क्लीन शेव्ड है करके, तो थोड़ा संभ्रम हुआ कि सही में मैं जो कर रहा हूँ सही है क्या, कुछ गलत? तो प्रभुपाद को एक बार उन्होंने सोचा पूछ ही लेता हूँ क्या करना। तो फिर सारी दाढ़ी वगैरह बढ़ी थी ऐसे, तो उन्होंने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद डू यू लाइक दिस, ऐसे करके, डू यू लाइक दिस, क्या ये आपको पसंद है? तो प्रभुपाद एकदम चकाचक शेव्ड थे पूरा सर और चेहरा वगैरह, प्रभुपाद सेड आई लाइक दिस। प्रभुपाद ने बोला मुझे ये पसंद है। तो फिर जैसे ही प्रभुपाद ने ये बोला, फिर मुकुंद प्रभु समझ गए और दूसरे दिन एकदम चकाचक सारा करके एकदम प्रभुपाद के समक्ष उपस्थित हुए ऐसे। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं, तो मुझे किसी के वेशभूषा या केशभूषा से आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि कैसे संस्कृति बदलती रहती है। तो हाल ही में मैं वृंदावन में था, तो एक भक्त थे, तो कान में कुछ ऐसे बाली की तरह डाला था, लेकिन वो जो है धातु का नहीं था, कुछ लकड़ी का था ऐसे, और फिर एक ही कान में था। तो फिर पहले देखने के बाद मुझे लगा शायद दूसरे कान का गिर गया है, तो मैंने बोला प्रभु वो कान का आपके दूसरे गिर गया है करके। नहीं, बोले प्रभु वो स्टाइल है, वो स्टाइल है। और मैंने बोला ये क्या, मुझे लगा सही में कि अभी, मैं बोला प्रभु ये क्या कुछ तुलसी वगैरह है क्या? काला था वो तो कृष्ण तुलसी वगैरह होगा। नहीं, बोले प्रभु कुछ कृष्ण तुलसी वगैरह नहीं है कुछ, तो कोई कनाडा के कोई वृक्ष का था वो ऐसे। और मैंने बोला ये फिर ये सब क्या है? तो बोले प्रभु थोड़ा कूल लगना चाहिए, ऐसे कूल इस प्रकार से ऐसे। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सारी चीजें, केशभूषा हो या वेशभूषा हो, बदलती रहती है। लेकिन एक भक्त जो है वो अगर केवल संस्कृति के स्तर तक सीमित रखता है भक्ति को, तो फिर उसके जीवन में भी ये भक्ति जो है, हो सकता है आज अच्छी लगे, कल जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो भक्ति जो है उसमें निरपेक्षता होनी चाहिए, रिलेटिव नहीं होनी चाहिए, सापेक्षता। तो इसलिए संस्कृति के स्तर पे, जो कि प्राथमिक अवस्था के लिए ठीक है, हम उसका खंडन नहीं कर रहे, लेकिन एक गंभीर भक्त को संस्कृति के स्तर से अध्यात्म के स्तर पे लेके आना चाहिए, ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। और ये जो यात्रा है संस्कृति के स्तर से भक्ति को अध्यात्म के स्तर पे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं भगवान के प्रति ज्ञान, भगवान भगवत विषयक संबंधी ज्ञान जो है। तो अगर हम फिलोसफिकल एजुकेशन देते हैं, अगर हम भगवान के प्रति ज्ञान जो है उसमें शिक्षा प्रदान करते हैं, तो फिर इस स्तर से उचित स्तर पे जो है हर एक व्यक्ति जो है वो लाया जा सकता है ऐसे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं ये चीज कि कृष्ण लीला केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। कृष्ण लीला इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज फॉर एंटरिंग इनटू। एक्चुअली इसके ऊपर बड़ा उहापोह करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की, कैसे कृष्ण लीला केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, वास्तविक लीला तो उसमें प्रविष्ट होने के लिए है ऐसे। इनफैक्ट वो जो पूरा असुर जो है वृंदावन के, उसके एनालिसिस में, उसके विश्लेषण भी यही मुद्दा जो है भक्ति विनोद ठाकुर प्रस्तुत करते हैं। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि भौतिक जगत में हो सकता है कि जैसे अन्य अन्य चीजें हो, हमें कभी अच्छी लगती है कभी नहीं अच्छी लगती है, वैसे ही भक्ति हमारे जीवन का एक अंग ना हो, बल्कि भक्ति ही जीवन हो, भक्ति जो है वो ही हमारे जीवन का केंद्र बने। भौतिक जगत में हम लोग समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, और इन समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस चाहते हैं, समाधान चाहते हैं उनका। ऐसे तो अगर आप देखोगे देवता, टिपिकली ज्यादातर देवता जो है बड़ी आशीर्वाद मुद्रा में रहते, हमेशा आशीर्वाद कि प्लीज टेक माय ब्लेसिंग्स एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। कांक्षंतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मज। और भगवान श्री कृष्ण देखेंगे तो आप उनके पास प्रॉब्लम के साथ जा रहे हैं, आशीर्वाद मुद्रा में नहीं, बांसुरी वेणु बजा रहे हैं। ऐसे तो देखने में लग सकता है कि अरे ये क्या उदासीन बाबा है कृष्ण भगवान, इनको मेरे समस्याओं के प्रति कुछ है कि नहीं। समस्याओं के साथ उनके पास जा रहे तो देवता कम से कम आशीर्वाद तो दे रहे, ये तो बस अपना ही मुरली बजा रहे वेणु बजा रहे अपने में ही मस्त है इस प्रकार से। एक्चुअली कृष्ण भगवान मुरली बजा के वास्तविक समस्या का समाधान दे रहे, और ये तथाकथित आशीर्वाद मुद्रा में ये समस्या का हल नहीं दे रहे। जन्म कर्म चमय दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। उसके पहले भगवान ने केवल बाह्य रूप से उनके जो आविर्भाव है उसके कारण बताए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम्। ये तो बाह्य रूप से है, ये एक्सटर्नल है। ये वास्तविक भगवान के आने का कारण तो है जन्म कर्म चमय दिव्यम, जो उनके जन्म कर्म को समझेगा ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के धाम को वापस चला जाएगा, और वो सोल्यूशन है। तो वेणु बजा के कृष्ण ये एडवर्टाइज कर रहे हैं कि भाई यहां पे सोल्यूशन मत ढूंढो, तुम मेरे धाम में आओ और वो वास्तविक सोल्यूशन है, ना कि इस भौतिक जगत में ही कुछ एडजस्टमेंट करना। अर्थात हमारे जीवन की समस्याओं के लिए उनको सुलझाना पड़ता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो तो करना ही चाहिए, उसमें कुछ संदेह नहीं है, या फिर वो कुछ बहुत क्लिष्ट विषय नहीं है समझना, वो तो ठीक ही है। लेकिन भौतिक जगत के समस्या वाले नेचर को, स्वभाव को हम बदल देंगे, ये जो आकांक्षा है ये गलत है। एक्चुअली यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। आप आपके प्रॉब्लम्स जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए सॉल्व करने का, लेकिन भौतिक जगत को हम बदल नहीं सकते। मामोपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम। कृष्ण देखिए जब भौतिक जगत को दुखालय अशाश्वत बोल रहे तो ऐसे ही बोल रहे, उस श्लोक में भौतिक जगत को दुखालय और अशाश्वत कहने का मुद्दा है ही नहीं, वो तो जनरल इन्फो है, वो तो हर कोई जानता है। इस प्रकार से कृष्ण बोल रहे हैं उस श्लोक में, उनका मुद्दा तो यह है कि जो मेरे धाम में आता है वो इस जगत में वापस नहीं आता है, और कैसा जगत, दुखालय अशाश्वत, एवरीबडी नोज इट, उसमें क्या है कुछ। तो इन पासिंग आचार्य से कि भगवान ने दुखालय अशाश्वत इन पासिंग बोल दिया है, यू अंडरस्टैंड, इन पासिंग मतलब बोलते बोलते, ये तो सबको पता है, इसमें क्या नई चीज है। इस प्रकार से तो भौतिक जगत का हम स्वभाव नहीं चेंज कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से वेणु बजा के वेणु गीत से भगवान गोपियों को आकृष्ट करते हैं, ब्रजवासियों को आकृष्ट करते हैं, वही भगवान वही अपने मुख से, वही अपने जो अधरोष्ठ है उससे भगवत गीत, भगवत गीता वो भी प्रदान करते हैं। और जैसे वेणु गीत गोपियों को आकर्षित करता है, वैसे भगवत गीता जो है या भागवत जो है, शास्त्रवाणी जो है, वो साधकों के लिए और जो बद्ध जीव है उनको आकर्षित करने के लिए भगवान बोलते हैं। अर्थात ये तो परमहंसों के लिए भी है, लेकिन खास करके साधकों को अपनी लीलाओं में आकर्षित करने के लिए भगवान जो है इस प्रकार का ये गीता बोलते हैं। तो ये वास्तविक प्रयोजन है, भगवान इसके लिए आते हैं इस जगत में। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हानि करिष्यन्ति केचन। कुंती देवी भी कहती है, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभिक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। ऐसा पदाम्बुज प्राप्त कीजिए जो भव प्रवाहो परमं, भव प्रवाह उपरम, भव प्रवाह को जो रोक दे, खत्म कर दे। ये भगवान के सारे उन अवतारों की सूची देने के बाद कुंती कहती है ये वास्तविक कारण है, भवेस्मिन् कृष्यमानानाम् एवं श्रृण्वन्ति गायन्ति। इस प्रकार से तो कृष्ण भावनामृत जो है सांस्कृतिक से आध्यात्मिक स्तर पे जो है एक गंभीर भक्त के लिए होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और यही वास्तविक कृष्ण भावनामृत है। एक्चुअली टू बी कृष्ण कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, प्रभुपाद ने एकदम सरल परिभाषा दी है कि नहीं इस प्रकार। तो जब इसकी बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा मुद्दा मैं चर्चा करना चाहूंगा कि कभी कभी रस की बात करते हैं या भगवान को भक्ति जो है रस को, हमारा जीवन जो है उसी को केंद्रभूत करके बनाना है, तो जब इसकी बात करते हैं तो भावनाओं की अनिवार्यता भी है उसमें। कभी कभी आध्यात्मिक जीवन में भावनाएं जो है वो लगता है कि व्यवधान है, दे आर ऑब्स्टेकल, ऐसे लगता है कभी कभी आध्यात्मिक जीवन में। लेकिन भावनाएं व्यवधान नहीं है, खास करके मायावादी तत्व ज्ञान है या शुष्क ज्ञान है उसमें ऐसा लगता है कि भावनाएं जो है उन भावनाओं से शून्य हो जाओ और फिर शांति के स्तर पे अगर कोई जाएगा तो वो वास्तविक प्रगति है अध्यात्म के मार्ग में। लेकिन ये भक्ति का तत्व ज्ञान नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं रामायण में कि वास्तविक भावनाएं जो है हमारी सत्ता का सबसे विशेष संसाधन है। द इमोशंस आर अवर मोस्ट स्पेशल रिसोर्स ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, वो कहते हैं। तो जो भावनाएं हैं उनको नकारना नहीं है। कभी हम भावनाओं की बात करते भक्त बोल रहे सेंटिमेंटल, ए सेंटिमेंटल, ये सेंटिमेंट जो है उसको निकाल दो, नहीं। एक्चुअली भावनाओं को निश्चित रखना है, लेकिन इन भावनाओं को कृष्ण के चरणों में जो है वो हमें रखना है। इनफैक्ट कृष्ण भावनामृत नाम ही वैसा है, भावना। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि एकलम मूल्यम जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते। तो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, वो जो भावना है कृष्ण भक्ति की, वैसी मति, वैसा जो कॉन्शियसनेस है, वैसी चेतना जो है वो ऐसे। तो जब भावनाओं की बात करते हैं, मैं इस टॉपिक को रस की ओर लेके जा रहा हूं, जो विषय जो श्री रूप गोस्वामी बात कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो जब भावनाओं की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसे लगता है कि भावनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं है, भावनाएं एकदम से आ जाएगी कभी, जैसे कभी सडनली हम लोगों को जप में एकदम बहुत स्वाद मिल जाता है, बहुत रस मिल जाता है, या कीर्तन में इतनी एक्सेसी आ जाती है कभी कभी, आप बोलोगे प्रभु प्रभु देखो देखो रोंगटे खड़े हो गए, देखो देखो एकदम इस प्रकार से, इतना एकदम आंख में पानी आ जाता है एकदम, और सोचते हैं कि शायद मैं आसक्ति तो है कम से कम, भाव नहीं है शायद उसके थोड़ा पहले, आसक्ति के स्तर पे इस प्रकार से। और दूसरे दिन देखेंगे तो जब इतना निरस होता है, सब माला निकाल के देखते हैं कि इसमें 108 ही मनी है ना, कि ज्यादा है कुछ। मैंने एक बार वृंदावन में एक भक्त को देखा, एक भक्त था, काउंट कर रहा था शैंटिंग में ही बीड्स को। मैंने बोला क्या हो गया, बोला प्रभु माला खत्म ही नहीं हो रहा है। बोला 108 ही है ना इसमें, मैं काउंट कर रहा हूं, 108 है कि कुछ ज्यादा डाल दिए, 120 कब से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण खत्म ही तो इस प्रकार से, तो कभी हमारा भी अनुभव है इस प्रकार से, लगता है माला क्यों नहीं खत्म हो रहा, कहीं ज्यादा बीड्स है क्या इस प्रकार से। तो एक और भावना जो है उसका उद्रेक है, दूसरी ओर इतना निरस है कि लगेगा कि मानो क्या भक्ति में कुछ होगा कि नहीं मेरा। तो देखिए, अगर भावनाओं के ऊपर निर्धारित रहेंगे तो कभी हो सकता है भक्ति में रस मिले, कभी ना मिले। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भावनाओं को हम लोग उद्दीपित कर सकते हैं, अगर उचित उद्दीपन देंगे तो कृष्ण भावनामृत जो है वो नियंत्रण के परे नहीं है, कृष्ण के प्रति भावनाएं उसका हम उद्दीपन कर सकते हैं ऐसे। तो आज आएगा तो बस अच्छा जप हुआ, कल भावना नहीं है तो बस छोड़ दो, ऐसे नहीं। तो अगर उचित उद्दीपन जाने हम, तो उस उद्दीपन के द्वारा हम कृष्ण भावनामृत की भावनाओं का हमेशा उद्दीपन कर सकते हैं, ऐसे श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। जैसे नाट्यशास्त्र में भी इस विषय का उहापोह होता है, माने उचित उद्दीपन है तो वो जो भाव है वो दर्शक में श्रोता में प्रकट हो जाता है, एक्चुअली उसी को रस कहते हैं। रस याने जो भाव दर्शक में प्रकट हो जाए, श्रोता में प्रकट हो जाए। जैसे कोई कॉमेडियन है तो कुछ कॉमेडी, कुछ प्रैंक्स कुछ करेगा, है वो, और पीछे आपने देखा होगा कुछ बैकग्राउंड भी होता है, पीछे लोग हंसेंगे हा 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 ऐसे करके। तो ये कॉम्बिनेशन जो है कि जिसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है, कृति हो रही है, उद्दीपन आलंबन, तो इसके द्वारा एक भाव जो है दर्शक में प्रकट हो जाता है, तो दर्शक भी हंसेगा हा 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 कॉमेडी है करके इस प्रकार से। अभी वही देखिए, हास्य ही कृति है, लेकिन आप देखिए, मानिए अभी दूसरा है हॉरर, तो ऐसा एक सीन दिखाई पड़ रहा है, सब पेड़ है, सारे पत्ते झड़ गए उससे, पूरा बगैर पत्तों का, और उस पत्ते के बाजू में आलीशान सुनसान हवेली है, और उस हवेली में कभी ये जो बिजली है कड़क रही है, और फिर सारे बादल वगैरह जो आवाज कर रहे हैं, और उसमें एक दरवाजा यू नो खुलता है, और फिर आप आवाज सुनते हो हा। तो अभी वही हास्य है, लेकिन अभी दर्शक हंसेगा नहीं, अभी क्या होगा, दर्शक जो है बाप रे क्या है ये, डरेगा ऐसे भयानक रस है ऐसे, पहले वाला हास्य रस ऐसे। तो कृति और सेटिंग, व्यक्ति जो है उसका कुछ एक्टिविटी और सेटिंग, वातावरण क्या है, इसके अनुसार एक भाव जो है प्रकट हो जाता है, रस प्रकट हो जाता है, फिर वो हास्य रस हो या फिर अन्य अन्य रस हो, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमारे भक्ति में भी अगर हम उचित उद्दीपन जो है वो हमारे जीवन में प्रकर्षता से रखे, तो हम आध्यात्मिक भावनाओं को जो है हमेशा उद्दीपित कर सकते हैं। तो ये उद्दीपन क्या है, ये उद्दीपन अन्य अन्य चीजें हो सकती है, अलग अलग चीजें हो सकती है, जिसे कोई पर्टिकुलर हम लोग देखते हैं कि कभी कोई भक्त होते हैं, अगर बहुत सारे बहुत सुंदर श्लोक है कोई, और उस श्लोक को पढ़ के एकदम यू नो भक्ति में इतना वृद्धि और इतना भगवान के प्रति भक्ति जो है उसका उद्रेक हो जाता है। कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है कीर्तन को सुन के हो, कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है भगवान के दर्शन करके अर्च विग्रहों का। तो ये सारे अलग अलग उद्दीपन है। तो हमारे जीवन में हमें देखना चाहिए कि कौन सा उद्दीपन जो है हमारे कृष्ण भावनामृत को ऊपर लेके आता है। और श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि उस उद्दीपन को यू शुड मैक्सिमाइज, उसको जो है हमने बहुत बढ़ाना चाहिए। अभी ये बात जब चल रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें जो सेवाएं दी जा रही है या जो हमारा हमसे अपेक्षा है, उस वक्त आप बोलो कि प्रभु ये उद्दीपन नहीं है मेरा, कुछ वो बोल रहे प्रभु जी प्रसाद हम सेवा करेंगे क्या, नहीं मेरा उद्दीपन नहीं है, मेरा उद्दीपन क्या है, जप करना या फिर अन्य अन्य, ये बात हो नहीं है। आज्ञाधारकता तो उद्दीपन के बहुत नीचे है, पहले तो आज्ञाधारी होना चाहिए भक्त को, एकदम जो वरिष्ठ है उससे। मैं ये मुद्दा इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि अगर आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको कोई सेवा को बता नहीं रहा है, उस अवस्था में कृष्ण भावनावृत में आप क्या करना चाहोगे, क्या आप स्वयं को अभिनिविष्ट कर सकते हो कृष्ण भावनामृत में, कि चाहिए कि हर बार कोई हंटर लेके आपके पीछे रहे और बोले हे भक्ति में क्या कर रहे, तू ये सेवा कर, वो सेवा कर, वो सेवा कर, मानो कोई आपको कुछ नहीं पूछ रहा है, आप क्या करोगे? तो वो करोगे जो आपको भक्ति में उद्दीपन करेगा। तो ये चीज है भक्ति में, बगैर किसी के मॉनिटरिंग के भी क्या हम भक्ति में अभिनिविष्ट हो सकते हैं? तो ये जो चीज है ये बड़ी जरूरी है ऐसे, और इसको अगर हम बढ़ाते हैं हमारे जीवन में, तो जो हमारा कृष्ण भावनामृत है वो ज्यादा से ज्यादा धीरे 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 हम लोग देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत में हम लोग जो है वो इंस्पायर्ड प्रेरित रहेंगे। नहीं तो फिर कृष्ण भावनामृत में अगर इस प्रकार से हम स्वयं एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो फिर तो कृष्ण भावनामृत कल्प वृक्ष की तरह काम करता है, कल्प वृक्ष के पास जाइए सब कुछ मिलेगा। तो वैसे इस कौन में आएंगे तो आपको गॉसिप चाहिए तो गॉसिप मिलेगी, पॉलिटिक्स चाहिए पॉलिटिक्स मिलेगा, कंट्रोवर्सी चाहिए कंट्रोवर्सी मिलेगा, रिस्पेक्ट चाहिए यहां से ज्यादा कहां मिलेगा, दुनिया में आप कहीं जाओगे आपको कोई आपको दंडवत प्रणाम करता है क्या? यहां पे तो कुछ दिनों में ही प्रभु जी वांछा कल्प करो व्यस्त कृपा, तो सीधा लोग झुक के जमीन पे दंडवत प्रणाम करते हैं ऐसे। कभी कभी लोगों को बड़ा अचरज हो जाता है, अरे ये क्या जमीन पे एकदम दंडवत प्रणाम करके प्रणाम करते हैं करके, तो बोलते हैं अच्छा है कृष्ण भावना में इतना इतना आदर, क्योंकि बाहर तो कोई आदर नहीं करता है कि नहीं, तो वो भी बहुत आकर्षक है इस प्रकार से। तो जो चाहिए मिलेगा कृष्ण भावनामृत में, खास करके क्या बोलते बद्ध जीवों की सोसाइटी में। श्रील सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि क्वारल्स और कॉन्ट्रोवर्सीज आर बाउंड टू बी देयर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, बिकॉज कृष्ण कॉन्शियसनेस इज रिक्रूटिंग द सोल्स फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। तो भौतिक जगत के जीव है तो स्वाभाविक है ये होगा, लेकिन हम लोग क्या चाह रहे हैं, व्हाट आर वी सर्चिंग फॉर, ये देखना पड़ेगा आपको। क्या हम चाहते हैं गॉसिप, कंट्रोवर्सी, ये वो, कि हम लोग बुद्धिपन चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का, तो कल्प वृक्ष है ये कृष्ण भाव, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। इसलिए वांछा कल्पतरु भ्यश्च, लिटरली जो आपकी वांछा है, जो आपकी इच्छा है, वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो अगर हम हमारे हमारी जिम्मेदारी है कि कृष्ण भावना भावित रहे। देखिए वैष्णव संघ तो है, वो बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, लेकिन उस वैष्णव संघ में भी कृष्ण भावना भावित रहना ये हमारी जिम्मेदारी है। श्रील प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में युधिष्ठिर आदियों का जो गृह त्याग है, युधिष्ठिर और पांडवों का, उस अध्याय में लिखते हैं कि एवरीबडी हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन। जब ये सारे पांडव चले गए, उन्होंने देखा भी नहीं कि द्रौपदी का क्या होगा या उनकी पत्नी जो है ये ऐसे। ऑफकोर्स क्योंकि जानते थे कि द्रौपदी कितनी महान है और कैसे भगवान में अभिनिवेश कैसे करना है, जानती है। लेकिन वहां पे उस जगह पे प्रभुपाद लिखते हैं एवरीबडी हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन। तो जमीन पे आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है सब कुछ, कैसे लड़ना है, प्लेन में कैसे उड़ाना है, ये वो सब। लेकिन जब आप आसमान में हो तो आप ही हो, आपको वहां पे कोई बचाने के लिए नहीं आ सकता है। प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मानिए अगर आप स्वयं ही ध्यान नहीं है आपका या फिर चूक गए, तो उसमें फिर हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति जो है, योद्धा जो है, उसकी जान भी जा सकती है। तो संघ तो बड़ा जरूरी है, अनिवार्य है भक्ति में, लेकिन निजी जिम्मेदारी भी है। अवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर टू बी कृष्ण कॉन्शियस। तो ये चीज जो है हमें हर एक को जो है समझनी चाहिए। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। कहते हैं ना कि आप घोड़े को पानी तक ला सकते हो, लेकिन पानी पिला नहीं सकते, पाइप डाल के पानी पिला, ये संभव नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत में संघ जो है आपको बहुत कृष्ण भक्ति प्रदान करेगा, लेकिन आप ले रहे हो क्या उसको, ये भी तो देखना चाहिए। तो संघ में जो व्यक्ति ग्रहण करेगा उचित इस प्रकार से, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर जब जीवन का अंतिम परीक्षा जो आएगा तो उसमें उत्तीर्ण हो सकता है। देखिए जीवन के अंतिम परीक्षा में हम लोगों के पास भगवान के भक्तों का संग होगा नहीं होगा कौन जानता है। हो सकता है हो सकता है नहीं भी हो। ऐसे अगर है तो बहुत विशेष सौभाग्य है, बहुत भगवान की कृपा है। लेकिन कितने बार ऐसा हो जाता है कि कैसे हमारी परीक्षा में, जीवन की अंतिम परीक्षा में भक्तों का संग नहीं है। तो किस प्रकार का संग में हमने संग ग्रहण किया है वैष्णव, वो जो भक्ति है वो किस प्रकार से ग्रहण कही है उसकी है, उसके अनुसार जो है ये इस स्थिति में जहां पे कि शायद संग ना हो वो हम लोग वहां पे उत्तीर्ण हो पाएंगे। तो मेरा मुद्दा निश्चित ये नहीं है कि भक्तों के संग की जरूरत नहीं वगैरह, वो तो मूर्खता है। प्रभुपाद तो कहते हैं दैट विल बी मैडनेस या हेलुसिनेशन कि संग की जरूरत नहीं। लेकिन संग के साथ साथ, एसोसिएशन के साथ साथ, वी ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर ओन स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये मुद्दा जो है मैं कहना चाहता था। इसके पश्चात जो तीसरी चीज है इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा, और वो है कि कैसे हमने रस की बात की, भक्ति को हमारे जीवन के केंद्र बनाने की बात की, भक्ति रस की बात की, और इस रस में कैसी भावनाओं की परिपूर्णता जरूरी है ये भी बात की। तो ऐसी भावनाओं का पूरा वर्षाव जो है वो श्रीमद् भागवत ने हमें करके दिया है। तो भक्ति में उसको अगर हम ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से भक्ति में काफी पुष्टि का अनुभव करेंगे, तुष्टि का अनुभव करेंगे। एक्चुअली अभिनिवेश के लिए, एब्जॉर्प्शन, कृष्ण में एब्जॉर्प्शन जो है, अभिनिवेश है, उसके लिए सर्वोत्तम आश्रय है श्रीमद् भागवत। और जितना कृष्ण के ऊपर हमारे आचार्यों ने लिखा है उतना किसने नहीं लिखा है। कभी कभार हम लोगों को लगता है कि अरे सब पढ़ के हो गया, अभी क्या और कुछ बचा नहीं है, सोच रहा हूं कि मैं कुछ और पढ़ूं, अन्य अन्य चीजें पढ़ूं ये वगैरह। पहले एक्चुअली हमारे संप्रदाय की विरासत जान लेनी चाहिए। कितनी बार तो भी भक्तों का काफी समय स्पेंड करने के बाद ऐसा भाव आ जाता है कि सब सुना है प्रभु जी, क्या कुछ नया बोल नहीं रहे, सब सुना है। सही में, वास्तविक सही में सब सुना है। एक बार अन्यत्र उत्तर भारत में एक भक्त मुझे मिले और बोले प्रभु क्या वही स्टोरी है, बहुत बार सुना है वगैरह, ऐसे क्या कुछ नया नहीं है इस कौन में। तो मैंने बोला प्रभु जी आप बैठिए, मैं आपको 50 नए मुद्दे सुनाता हूं अभी यही पे कृष्ण भावनामृत के बारे में जो आपने कभी नहीं सुने हैं एकदम, कभी भी उसको सुना देंगे इस प्रकार से। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए महाप्रभु से लेके श्रील प्रभुपाद तक हमारे जो भी मतलब भगवान महाप्रभु और फिर आचार्य हुए, उन्होंने इतना कुछ देके रखा है कृष्ण के ऊपर। एक्चुअली हमें चाहिए कि उसमें डुबकी लगाए, हम उसको पढ़े। वह छोड़ के अन्यान्य जगह पे कुछ पढ़ना चाहते हैं वगैरह, तो ठीक है, विषादम पे अमृतम ग्राह्यम कहा है, हर जगह से सार ग्रहण करना चाहिए वैष्णव ने, लेकिन वो सबसे पहले अपनी विरासत देखो। कभी लगेगा कि हम लोग ही दरिद्री है और बाहर बहुत कुछ मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हम लोग पहले कितने कितने धनी हैं इस चीज को जानना चाहिए, हमारे आचार्यों ने क्या क्या दिया है और उसमें कितना कुछ भगवान के बारे में क्या कहेंगे, आश्चर्यजनक वर्णन है। ये चीजों को अगर हम समझेंगे तो फिर समझेंगे कि कैसे एक बहुत विशाल विरासत को प्राप्त किए हम लोग। कृष्ण कथा को कभी पूर्ण विराम नहीं होता है, देयर इज नो फुल स्टॉप टू कृष्ण कथा। तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ हमारे लिए सबसे प्रमुख और सबसे फंडामेंटल प्राथमिक और साथ ही साथ प्रमुख ग्रंथ बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है। तो ये सारी चीजें जो है, इस सारी विरासत को ग्रहण करेंगे। प्रभुपाद स्वयं प्रथम स्कंद में इसके बारे में चर्चा करते हैं, 1.1.1 परपोर्ट में, कि कैसे ये सारे आचार्य जो है इन्होंने लिखा। तो ये अगर हम ग्रहण करेंगे इस ज्ञान को प्रभुपाद के द्वारा किया, पहले तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ ही बहुत बार होता है कि ठीक से पढ़े नहीं रहते हैं, और फिर अन्य अन्य हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्यों को तक क्या कहना। तो मैं कहना इतना ही चाहता हूं कि बेसिकली हमारी विरासत को समझने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत कुछ है जो कि हमें कृष्ण भावनामृत में बहुत तुष्टि प्रदान कर सकता है ऐसे। तो उससे ये भाव जो है, बहुत सुन लिया, अभी और क्या नया है, ये नहीं नहीं होगा, ये कभी भी इतना है हम लोगों ने, वी हैव बेयरली स्क्रैच द सरफेस, अभी तक कुछ उसको सरफेस को भी स्क्रैच नहीं किया है, इतना कुछ टीकाओं में और अन्यत्र भी दिया गया है ऐसे। तो श्रीमद् भागवत जो है 9 स्कंधों में कृष्ण, श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण परम साध्य और कृष्ण परम साधन, इसके भक्ति जो है वो परम साधन है और परम साध्य कृष्ण है, इस विषय को पहले 9 स्कंधों में प्रतिपादित करता है, और फिर उस ज्ञान के पश्चात 10वें स्कंद में कृष्ण की लीलाओं को जो है लॉन्च करता है। श्रीमद् भागवतम जो है कृष्ण की लीलाओं को प्रस्तुत करता है। तो खास करके ये जो कृष्ण है उनके प्रति, उनका सौंदर्य, उनके नाम रूप गुण लीलाओं का जो वर्णन हमारे आचार्यों ने किया है, वैसा वर्णन एक्चुअली कोई संप्रदाय में नहीं है। वो इतना विशेष और इतना अभिनिवेश करने वाला है। जैसे भागवत आपने बहुत जगह पे देखा होगा, कृष्ण के 10वें स्कंद में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करता है। तो इसके ऊपर शिलक कवि कर्णपूर ने बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है और उसके अंदर विश्लेषण करते हैं कृष्ण के सौंदर्य का, खास करके। तो हम रस की बात कर रहे हैं तो मैं खास करके कृष्ण के सौंदर्य, इस विषय के ऊपर मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। तो कृष्ण के सौंदर्य का प्रतिपादन करते हुए कवि कर्णपूर कहते हैं कि एक्चुअली कृष्ण का सौंदर्य जैसे यशोदा माता देखती है और श्री राधा, राधा रानी देखती है, उसमें बहुत विभिन्नता है, वो बहुत भिन्न है। कृष्ण के सौंदर्य को दोनों भी अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार का है, अलग रस है उसमें। तो जो 16 वर्षीय कृष्ण है वो माता यशोदा, नंद बाबा एवं अन्य जो गोपियां हैं, वरिष्ठ गोपियां, उनके लिए वात्सल्य रस का सौंदर्य प्रकट करते हैं। जो गोप सखा है उनके लिए सख्य रस का सौंदर्य प्रकट करते हैं, और जो माधुर्य लीला के भक्त है, श्री राधा रानी और अन्य गोपियां, जो भी भगवान की प्रेयसियां हैं, प्रेमिकाएं हैं, उनके लिए जो है माधुर्य रस का विग्रह, माधुर्य रस का सौंदर्य जो है प्रकट करते हैं। तो हालांकि वे वही 16 वर्षीय भगवान है, लेकिन ये तीनों जो कैटेगरी है उनके अनुसार अपने सौंदर्य को जो है भगवान प्रकट करते हैं। ये सौंदर्य का प्राकट्य जो है वो, तो खास करके जो वात्सल्य रस है उसके लिए बाल्य विग्रह जो है वो बड़ा अनुरूप है। शून्य तो नहीं, 1 से लेके 5 आयु में जो है, तो ये बाल्य का जो विग्रह है, बाल्यकाल कहते हैं इसको, है कि नहीं, या कौमार कहते हैं। तो ये जो है ये विग्रह वात्सल्य रस का उद्दीपन बड़ा सुंदर करता है। अगर आप 6 से 10 देखोगे तो सख्य रस का, इसमें मित्रता वगैरह बड़ा प्रधान हो जाता है। तो 6 से 10 जो है सख्य रस का विग्रह जो है उसका सौंदर्य भगवान प्रकट करते हैं, और फिर 11 से लेके आगे 15-16 इसमें भगवान जो है कैशोर आयु प्रकट करते हैं, जो कि माधुर्य रस का सौंदर्य प्रदान करते हैं। तो अगर वात्सल्य रस का विग्रह, सख्य रस का विग्रह या फिर माधुर्य रस का विग्रह, इसमें अपने अपने विग्रह के अनुसार भगवान सुंदरता प्रकट करते हैं। जैसे कोई पहला उदाहरण वात्सल्य रस है, तो वात्सल्य रस में जो बच्चा है एक से लेकर पांच साल की आयु में, तो बच्चा जो है वो मोटा होना चाहिए थोड़ा, है कि नहीं। माने बच्चा ऐसा है एकदम टीबी पेशेंट जैसा, एकदम इतना, तो हम लोग बोले इसको क्या खाने को नहीं देती क्या मां ऐसे। तो बच्चा है तो मोटा है तो अच्छा दिखता है, एकदम अच्छा मोटा हो, एकदम चब्बी चिक्स, बड़े बड़े गाल हो, उसके पेट भी अच्छा हो, ऐसे साउथ इंडियन पेंटिंग्स में आप देखोगे कृष्ण का इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण होता है, एकदम कृष्ण जो है मोटे, एकदम बढ़िया से चब्बी चिक्स वाले, देखते ही बच्चा कुछ 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 करना चाहेगा कोई भी, है कि नहीं। बच्चा जैसे ही देखते हैं उस प्रकार से, एकदम सूखी लड़की की तरह, सूखी लकड़ी है उसकी तरह अगर बच्चा देखेगा तो हम लोग फिर सोचेंगे अरे क्या दाल वगैरह नीचे गए है ऐसे, इसको खाने को तो पहले इस प्रकार से। और वही अगर बड़ा हो जाता है युवक, तो अभी वो मोटा है अगर, और पेट वगैरह आगे निकला है तो फिर कैसे वो भद्दा दिखता है अभी, वहां पे तो वो स्लिम होना चाहिए एकदम, है कि नहीं, सारा प्रोपोर्शन में होना चाहिए शरीर जो है वो। तो युवक अवस्था में जो सुंदरता बचपन में है वो नहीं होनी चाहिए, वो कुछ और होनी चाहिए इस प्रकार से। तो कृष्ण जो है उसके अनुसार अनुरूप सौंदर्य जो है प्रकट करते हैं। जैसे वात्सल्य रस में जब भगवान अपना सौंदर्य प्रकट करते हैं, तो श्रील जीव गोस्वामी और कवि कर्णपुर दोनों भी प्रथम बार जब यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को देखा उसका वर्णन करते, बड़ा सुंदर वर्णन करते। तो प्रथम बार जब कृष्ण को देखा माता यशोदा ने, तो पहले तो कृष्ण को वसुदेव ने लाके रख दिया, और फिर दोनों कृष्ण, आप जानते हो वो स्टोरी, नंदनंदन और वासुदेव कृष्ण जो है वो एक हो गए, और फिर ये सारा मोह जो है, ये योग माया जो है पूरा निकलने के पश्चात, फिर कृष्ण जो है उसको सूतिका ग्रह की जो दासियां थी जहां पे यशोदा माता जो है लेटी थी, तो वो सूतिका ग्रह की दासियों ने कृष्ण को देखा, और जैसे ही कृष्ण को देखा, प्रथम बार ये दर्शन हो रहा है कृष्ण का, इतना सुंदर बालक उन्होंने कभी जीवन में देखा नहीं था, इतना सुंदर बालक, मानो जैसे उद्रेक हो रहा था आनंद का ऐसे। तो तुरंत उन्होंने माता यशोदा जो है वो, जो कि बड़ी शांत थी, बड़ी थक गई थी, उनको उठाया और भगवान कृष्ण जो है, लाला जो है, उनको दिखाए। तो जब भगवान कृष्ण को प्रथम बार यशोदा माता ने देखा, तो विश्वास नहीं यशोदा माता का हुआ कि ये मेरा ही बच्चा है। इतना भगवान सुंदर थे, पूरा शरीर इंद्रनील मणि की तरह, ब्लू सफायर ऐसा पूरा शरीर था उनका, और फिर पद्मराग मणि यानी रूबी, रेड रूबी उसकी तरह भगवान के ओष्ठ थे, और फिर कमल राग मणि, ये हम लोगों को मणि भी पता नहीं है कितने सारे इसमें से, तो कमल राग मणि जो है उसके तरह भगवान के जो है हथेलियां और जो पैर थे इस प्रकार से थे। तो उन्होंने सोचा जैसे मानो मणिमय, ये तो मणि ही है कोई, तो इस प्रकार से भगवान का सौंदर्य देख रही थी। लेकिन फिर यशोदा सोची अरे मणि तो बड़ा कठिन होता है, हार्ड, तो ये तो इतना सॉफ्ट है वो, मानो जैसे नवनीत का गोला, आपने माखन के गोले को हाथ में लेना चाहे तो हाथ अंदर चला जाएगा, उंगली अंदर चली जाएगी। तो ऐसा यशोदा माता को उस रूप को देख के लगा कि मैं इसको स्पर्श करूंगी तो मेरी उंगली अंदर चली जाएगी, इतना ये सॉफ्ट है करके। तो यशोदा माता डर रही थी उसको स्पर्श करने के लिए कि उसको क्षति ना पहुंचाए, इतना सुकुमार है। एक्चुअली यशोदा माँ स्वयं भी बहुत सुकुमार है, लेकिन तो भी वो इतना कृष्ण सुकुमार है, इनसे इतना डर रही थी कि डर गई कि मैं इनको स्पर्श करूं कि नहीं ऐसे। लेकिन बाकी सारी जो गोपियां थी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम्हारा लाला है, इसको ले लो अपने पास ले लो। तो जब स्पर्श करने के लिए कृष्ण के स्पर्श करने के लिए यशोदा झुकी, तो कृष्ण के शरीर में उसने अपना प्रतिबिंब देखा, और जब अपना प्रतिबिंब देखा कृष्ण का, तो उसको लगा कि कोई डाकिनी, कोई योगिनी उसका रूप लेके कृष्ण को चुराने के लिए आई है। तो तुरंत चिल्लाई नृसिम्मा नृसिम्मा नृसिम्मा, ऐसे करके यशोदा माँ चिल्लाई एकदम, गच्छ आराध गच्छ आराध, मतलब निकलो यहां से, जाओ जाओ यहां से, निकल जाओ ऐसे ऐसे करके यशोदा माता जो है चिल्ला रही और भगवान को प्रार्थना कर रही कि मेरे लाला को रक्षा करो, भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए नरसिम्हा को प्रार्थना प्रार्थना जो है वो कर रही है ऐसे। और फिर ये सब हुआ, आवाज वगैरह इससे, तो कृष्ण जो कि आंखें बंद थी उनकी, तो आंखें बंद थी सो रहे थे, तो ये सारे गलबल सारा आवाज हो गया, तो कृष्ण ने आंखें खोली, उठे और पहली बार कृष्ण ने आंखें खोली उनकी, इतनी बड़ी वो कमल की पंखुड़ी की तरह आंखें जब कृष्ण ने खोली, और जब उसका उनका दृष्टिपात हुआ यशोदा के ऊपर, जैसे मानो प्रेम और हर्ष का ज्वालामुखी जैसे निकल जाए ना, वैसा यशोदा के हृदय में एक्चुअली प्रेम का ज्वालामुखी फट गया एकदम, ऐसे पूरा रोमांचित हो गई वो कृष्ण की वो सुंदरता देख के और कृष्ण का वो स्वरूप वो सुंदर सुंदर रूप देख के, तो निहारने लगे कृष्ण की कि कौन है ये, कैसा बालक है इस प्रकार से, तो अपनी गोद में उठा के फिर कृष्ण भगवान को अपना दूध पिलाने लगी यशोदा माता जो है वो। तब जब स्तनपान किया उन्होंने, तो उसके पश्चात उन्होंने देखा कि कृष्ण के वक्षस्थल पे दाहिने भाग में कुछ दाग जैसा है, तो अपने आंचल से उस दाग को पोंछना चाहती थी, छोटे बच्चे के शरीर के ऊपर कुछ दाग है तो पोंछना चाहती थी, एकदम सॉफ्टली पोंछना चाहती थी, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था दाग, तो फिर यशोदा ने देखा अरे ये तो श्रीवत्स है, वो जो दाग था वो एक्चुअली रोमावली थी, वो रोम श्रेणी थी, मतलब बाल थे कृष्ण का जो दाहिने वक्षस्थल पे जो चिन्ह है श्रीवत्स का इस प्रकार से। तो इतना ये सुंदर रूप था कृष्ण भगवान का। जब ये वार्ता नंद बाबा को मिली तो नंद बाबा तो पहले तो जब ये वार्ता मिली नंद बाबा को तो एक वृद्धा ब्राह्मणी स्त्री थी, उन्होंने जाके ये वार्ता दी, नंद बाबा तो इतने उन्माद में चले गए, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, कृष्ण पुत्र के रूप में उन्होंने प्राप्त किया है, कि जब आ रहे थे उस सुतिका ग्रह तक तो गिर रहे थे यहां वहां मूर्छित होके, इतना उनको अत्यानंद हुआ था, इतना हर्षोल्लास हुआ था। और जब आके सुतिका ग्रह में जब उन्होंने वो भगवान का सौंदर्य देखा, रूप देखा, तो बस वहां पे केवल यमुना जी बह रही थी, श्रीजी गोस्वामी कहते हैं बस उनकी आंखों से नेत्रधारा बैठ बहाते हुए कृष्ण के सौंदर्य जो है उसको निहारते रहे। तो ऐसा जो कृष्ण का ये सौंदर्य है, ये एकदम अनुरूप है उस वात्सल्य रस को उद्दीपित करने के लिए, ऐसा ही वो सख्य रस में, ऐसा ही वो माधुर्य रस में करते हैं। इनफैक्ट जब कृष्ण बढ़ने लगे, बड़े होने लगे, तो फिर उनकी लीलाएं तो भागवत में रिंगन लीला वगैरह आदि काफी उसका वर्णन आता है, लेकिन इतना सुंदर कृष्ण लीला करते थे, चलने के लिए सीख रहे हैं तो ऐसा थोड़ा थोड़ा किसी दीवार को पकड़ के उठने का प्रयास कर रहे और फिर थोड़ा छोड़ देते, धड़ाम करके गिर जाते, ऐसे जो पूरे विश्व को विश्वंभर, जो विश्व को अपने अंदर समाये हुए है और पूरे विश्व को ऊर्जा प्रदान कर रहे, वो चल नहीं पा रहे, लेकिन जैसे थोड़ा चलने लगे तो बड़े शरारती हो गए, रिंगन लीला में ही रेंगते हुए बड़े शरारती थे, लेकिन चलने वक्त तो बहुत शरारती हो गए। इसको श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने भी कहा है, गोवत्स बाले शिशु का कपक्षम बदनंतम अंबोज दलायताक्षम उवाच माता चिबुकम ग्रहित्वा गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण जो है इतने शरारती थे, एक बार थोड़े बड़े हो गए तो एक गोपा की शिखा जो उनका मित्र था और एक जो बछड़ा है उसकी पूंछ, इन दोनों को बांध रहे थे। आप सोचो क्या होगा, पकड़ना अलग है लेकिन इसकी शिखा बांध रहे, एकदम शिशु काक पक्षम ऐसे, और बांध रहे थे चुपचाप ऐसे। माता पीछे से आके बोली, उवाच माता बोली चिबुकम ग्रहित्वा, उनके हनु को उठा के हुए बोली, हाँ क्या क्या चल रहा है गोविंद दामोदर माधवेति, क्या चल रहा है गोविंद, हे दामोदर ये क्या चल रहा है करके ऐसे। तो हाँ नहीं नहीं बोले कुछ नहीं बस ऐसे ही इस प्रकार से। तो ऐसी लीलाओं से लिटरली कृष्ण ने एकदम आनंद कुंड में निमज्जित कर दिया पूरे नंद बाबा और यशोदा और इन सब को इस प्रकार से। तो ऐसे कृष्ण जो है एकदम अनुरूप जो है लीला प्रकट करते हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बस। तो इसी प्रकार से सख्य रस विग्रह और इसी प्रकार से माधुर्य रस विग्रह जो है उसमें भी सुंदरता जो है भगवान अपनी प्रकट करते। छोटा बच्चा होता है तो माता बड़ी अच्छी लगती है उसको, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है खास करके पौगंडावस्था 6 से 10 के आयु में, तो मित्रों के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी बचपन में तो माता को छोड़ के किसी के पास नहीं जाता, लेकिन अभी जब खेल चल रहा है और माता बुलाती है तो फिर उसको लगता है अरे क्या ये व्यवधान है, हमको खेलना है कि नहीं, हम सब ने अनुभव किया है ये, ऐसे तो खेलना है ये माता बुला रही कर। तो भगवान भी ऐसे ही खेलने में पूरे मग्न हो जाते थे, सख्य रस में पूरे मग्न हो जाते। तो रोहिणी माता को यशोदा कहती थी कि बुलाइए उस कृष्ण को, बुलाइए, खाने का समय हो गया है, कभी खाता नहीं टाइम पे, ऐसे। तो रोहिणी जाके बुलाती है कृष्ण को, हे कृष्ण, बलराम, सबको बुलाती, लेकिन एक्चुअली कृष्ण आते नहीं है, क्योंकि उनके दोस्त भी बोलते हैं जाने का नहीं कहीं, इधर खेल बीच में छोड़ के नहीं जाने का, ऐसे। तो रोहिणी को लगता है कि एक्चुअली मेरा प्रेम पर्याप्त नहीं है कृष्ण को बुलाने के लिए। तो रोहिणी ऐसे नहीं सोचती है, अरे क्या है ये, सुनता नहीं है, अवज्ञा करता है, नहीं, मेरा प्रेम पर्याप्त नहीं है, ऐसी सोचती। तो बोलती है यशोदा को कि आप बुलाइए, आपका प्रेम है कृष्ण के ऊपर, आप बुलाइए। तो फिर जब यशोदा माता बुलाती है, तो फिर कृष्ण तो अभी यशोदा बुला रही है तो जाना ही है। तो दोस्त बोलते, देखो अगले बार तुम खेल में नहीं लेंगे, फिर ऐसा बीच में छोड़ के नहीं जाने का, हम सर राज्य छोड़ून जाए सर नहीं। दोस्त नो मराठी विल नो दिस फ्रेज, सो देन दे डू लाइक दिस। सो कृष्ण इज यू नो स्टक अप इन बिटवीन, देन यशोदा ओनली कम्स देयर इन द प्ले एंड देन सेज व्हाट्स गोइंग ऑन, यू पीपल डोंट वांट टू ईट, आप लोगों को खाना नहीं है यहाँ पे कुछ, सब खेल वेल कर रहे हो, खाना सब भूल गए। तो फिर सबको लेके जाती है कृष्ण, सारे गोप सखा, कृष्ण, बलराम, और सबको प्रसाद जो है वो खिलाती है अच्छे से, फिर कृष्ण उनके साथ सब जो है वो खाते। तो इस प्रकार से, तो सख्य रस में कृष्ण बड़े स्टाइलिश, एकदम शरारती और स्टाइलिश, श्रृंग वेणु एकदम ऐसे ऐसे, उनके सखाओं के हीरो है, एकदम नायक है। सखाओं को लगता है अरे क्या है ये, इसके साथ रहना है हमें, इस प्रकार से हमारा हीरो है ये, तो एकदम फुल स्टाइल में एकदम। यहां तक कि यशोदा जो श्रृंगार करती है उनका, कृष्ण का, उसको निकाल देते हैं, और धातु प्रवाल से सखा अपना श्रृंगार करते हैं कृष्ण का, मतलब अपने से श्रृंगार करते हैं, और कृष्ण को बहुत पसंद है वो, बहुत अच्छा लगता है सख्य रस विग्रह के रूप में, सख्य रस। और इसी प्रकार से माधुर्य रस विग्रह, ये तो परमोच्च सीमा है, कवि कर्णपुर कहते हैं भगवान का 14 से 16 के उम्र में जो रूप है, और उसमें भी खास करके भगवान का एटर्नल आध्यात्मिक स्वरूप तो 16 साल का षोडश वर्षीय कृष्ण है। तो ये अन्य सारे विग्रहों का मूल विग्रह है जो माधुर्य रस विग्रह है, सारे अन्य विग्रहों का मूल प्रकट मूल रूप है, और भगवान ये रूप धारण करते हैं गोलोक वृंदावन में हमेशा, और प्रस्तुत करते हैं रस के अनुसार अन्यान्य यू नो रस विग्रह, जैसे वात्सल्य, जैसे माधुर्य वगैरह आदि, इस प्रकार से। तो माधुर्य रस विग्रह की ये बात करके मैं अंत करूंगा। तो भगवान जब चले जाते हैं गोचारण के लिए, तो गोचारण में तो भगवान पूरे दिन गोप सखाओं के साथ रहते हैं, तो माता यशोदा की भी उत्कंठा हो जाती है उनके दर्शन की, और गोपियों की भी उत्कंठा हो जाती है। तो जब समय आता है गोचारण के पश्चात वापस घर पे जाने का, तो गौवें जो है वो अभी जानती है कि कृष्ण का संग जो है अभी हम लोग जो है विरह होने वाला है, कृष्ण चले जाएंगे अपने घर पे, और गौवें तो अन्य अन्य जगहों से है, खास करके गोष्ठी में रहेगी हमेशा, तो गौवें जो है वो नहीं जाना चाहती है। तो इसलिए कृष्ण वेणु बजा के जब बुला रहे उनको तो सुनती ही नहीं तो फिर कृष्ण, एक तो वो कारण है, दूसरा कारण है जीव गोस्वामी कहते कि वो चाहती है कि अपना नाम पुकारे कृष्ण जो है वो, वेणु से तो ठीक है पुकार ही रहे, लेकिन नाम पुकारे ऐसे करके। चक्रवर्ती ठाकुर ने बड़ा सुंदर विवेचन किया है कैसे जो गायें हैं वो चार प्रकार के रंग की है, यू नो शुक्ल है, रक्त है, और फिर कृष्ण ब्लैक, और फिर पीत है, और उसमें 25 शेड्स है हर एक कलर में, तो इस प्रकार से 100 शेड्स हो गए, और फिर उसके पश्चात भी 8 अलग प्रकार के शेड है, तो ऐसे 108 प्रकार के शेड्स है, तो उसमें अलग 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 प्रकार की गायें होंगी, और हर एक को गाय को बुलाने के लिए हर एक शेड वाली हर एक ग्रुप ये जो आया है कि नहीं, इसके लिए कृष्ण एक रत्नों की माला रखते हैं 108 मनियों की, और ये 108 मनी जब बुलाते हैं तो इस काउंट रखते हैं इस प्रकार से। तो एक गाय भी जो है भगवान कुछ तृण के प्रलोभन से इधर उधर चली ना जाए, इसलिए भगवान एक एक गाय को काउंट करके भगवान जो है बुलाते, धवली कहते, गंगे मुक्ते, तो फिर जैसे ही सुनती है तो फिर बहुत खुश होकर दौड़ के भगवान के पास आती। तो हर एक गाय को भगवान बुलाते हैं, एक गाय को भी छोड़ते नहीं है, कहीं घास के प्रलोभन से यहां वहां छूट ना जाए करके। तो ये गोपाल है, बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं भगवान आप गोपाल हो, एक गाय को भी यहां वहां छूटने नहीं देते हो, आपके प्रेम से वंचित नहीं होने देते हो। मेरे गो यानी मेरी इंद्रियां एक नहीं, सारी इंद्रियां यहां वहां भटक रही है। भगवान कृपया रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, पाहि माम रक्ष माम, वो कहते हैं हे कृष्ण, क्यों क्यों जो है मेरी इंद्रियों को आप यहां वहां जाने दे रहे, आप गोपाल हो। इस प्रकार से तो जब ये कृष्ण आते हैं वापस वहां से गोचारण करके, तो व्रज के बाहर जब समय हो जाता है सायंकाल का, जब कृष्ण वापस आ रहे हैं गोचर गोरज मुहूर्त पर, तो फिर नंद यशोदा व्रज के बाहर आ जाते हैं एक्चुअली अपना महल छोड़ के उनको वेलकम करने के लिए। अभी कृष्ण आने वाले हैं, सारे गोप सखा और गायें वगैरह सब आने वाली है। इस प्रकार से तो गोपियां तो जो है भगवान की प्रेमिकाएं, वो तो सबके जैसे ऐसे खुले में भगवान को वेलकम नहीं कर सकती है एकदम, तो वो सब अटारियों पे चली जाती है, टेरेस पे चली जाती है और भगवान को वहां से निहारती है। तो जब भगवान आते हैं तो पहले तो एकदम एक रज धूलिकन का एक बहुत बड़ा बादल दिखता है, क्योंकि इतने सारे गोप सखा वगैरह आदि आ रहे हैं, गायें आ रही है, तो पहले सारा बादल दिखता है। और वो बादल देख के ही कवि कर्णपुर कहते हैं कि गोपियों के हृदय में, यशोदा के हृदय में जो हृदय है उनका, वो ये करने लगता है, इट बीट्स, इट पैल्पिटेट्स सो फास्ट, तो इस प्रकार से। और फिर कुछ समय पश्चात जब वो रज का बादल हट के कृष्ण का दर्शन होता है, तो दिखता है कि बलराम जी आगे है और कृष्ण जो है पीछे अपने गोप सखाओं के साथ चल रहा है। तो केवल वो दृश्य इतना प्रदान करता है आनंद, इतना सुख प्रदान करता है, उत्कंठा जो है उनकी उसको पूरी पूरी तरह से तृप्त कर देता है। एक्चुअली कृष्ण बलराम तो साथ में चलते हैं दोनों, तो यहां पे बलराम आगे और कृष्ण पीछे क्यों? तो कवि कर्णपुर बोलते हैं जैसे ही व्रज में आने लगे तो कृष्ण जो है वो थोड़ा धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो बलराम कहते हैं अरे क्या है, अभी घर पे जाना है कि नहीं, इतना धीरे चल रहे हो, चलो, यशोदा माँ हमारे लिए प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हें भूख वगैरह लगी नहीं? नहीं दाऊ जी मैं बहुत थक गया। कृष्ण ऐसे स्लोली चल रहे हैं, एकदम स्लोली। तो बलराम कहते अरे इतना स्लो क्यों चल रहा है, अभी कैसे थक गया, अब तक तो बहुत अच्छे से चल रहा था। तो फिर बोलते नहीं मैं बहुत थक गया, आप आगे जाइए। तो बलराम बोलते ठीक है। तो बलराम जैसे ही आगे जाते कृष्ण को ऐसा लगता है मोक्ष हो गया, एकदम खुश हो जाते। क्यों ऐसा है? और बलराम जी भी है जानते हैं एकदम क्या चक्कर है। ये बलराम जी भी जानते। तो अभी भगवान प्रवेश कर रहे और अटारियों में जो सारी भगवान की प्रियां हैं, गोपियां हैं, उन हरेक गोपी के ऊपर दृष्टिपात करके उनके हृदय को अपने नेत्रों के दृष्टिपात से पूरी तरह तुष्ट कर देते हैं भगवान। वो प्रेम का आदान प्रदान है सारी गोपियों के साथ। तो ये बलराम जी के सामने करने के लिए बड़े लज्जित हो जाते हैं, तो इसलिए बलराम जी आगे जाते हैं और फिर कृष्ण हर एक गोपी के साथ ये प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, पूरी तरह से अपने नेत्रों के दृष्टिपात से उनको पूरी तरह से तुष्ट कर देते हैं। जैसे भगवान दृष्टिपात करते हैं तो जैसे भगवान का वो सौंदर्य, भगवान का वो प्रेम, इस प्रकार का आदान प्रदान होता है, वो गोपियां धड़ 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 करके ऐसे गिर जाती है नीचे, एकदम मूर्छित हो जाती है। एक्चुअली केवल ये वर्णन भी सुनेंगे ना तो कोई समझ जाएगा कि ये प्रेम जो है ये दूसरे जगत का है, इसमें भौतिकता का लवलेश भी नहीं है, कहीं ऐसा प्रेम दिखाई नहीं पड़ता है इस जगत में। कहाँ है ऐसा प्रेम कि जहां पे इस प्रकार का हम लोग देखते हैं उत्कंठा जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से पूरी तरह गोपियों के हृदय की इच्छा अपने नेत्रपात से तुष्ट करके भगवान जो है वो व्रज में प्रवेश करते हैं। और अभी यशोदा माई जो है कुछ अंतर पे है, और यशोदा जब देख रही है कृष्ण इतने आगे उनके सामने, तो यशोदा माता घुटनों पे बैठ के अपनी बाहें खोल के कृष्ण को पुकारती है कृष्णा, ऐसे करके इतने उत्कंठा से। तो कृष्णा भी रोक नहीं पाते स्वयं को, दौड़ के जाके यशोदा माँ का आलिंगन करते हैं। और फिर उसके बाद तो कवि कर्णपुर ऐसा वर्णन करते हैं उन दोनों के प्रेम के इस आदान प्रदान का। तो ये भगवान का इस प्रकार का माधुर्य रस विग्रह और वात्सल्य रस विग्रह और सख्य रस विग्रह ये चलता रहता है भगवान। तो ऐसे ये भगवान हमारे हृदय को पुष्ट करने के लिए, तुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी उपहार दिए है। तो हमारा ये परम सौभाग्य है एक्चुअली कि इसको प्राप्त किए है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम न तत्रपुर दृश्य भी पिबंत्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च नित्योत्सवम। तो ऐसे ये कृष्ण भगवान का सौंदर्य, यानी सब गोपियों के लिए, व्रज सखाओं के लिए, नंद बाबा के लिए नित्योत्सवम, इट्स अ फेस्टिवल, इट्स एन एटर्नल फेस्टिवल। तो यही हमें भी प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आ रहे, बस हमें चाहिए कि इस सौभाग्य को स्वीकार करें और फिर इस आनंद कुंड में स्वयं को निमज्जित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, कृपया क्षमा कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। आइए हम कन्हैया कृष्ण प्रभु को धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल। कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। मराठी श्रीमद् भागवत भगवत गीता क्लास 11:30 बजे इस ग्रेस विजय केशव प्रभु द्वारा 6 तारीख को, मतलब शुक्रवार के दिन हम मनाने जा रहे हैं राधाष्टमी महामहोत्सव। दोपहर को 12 बजे तक फास्टिंग है और डिटेल प्रोग्राम का ये आपको SMS के द्वारा पता करवाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए स्पेशल गेस्ट स्पीकर हमारे बीच में आ रहे हैं हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु। 6 और 7 तारीख को उनका श्रीमद् भागवतम क्लास सुबह मंदिर में होगा। अभिषेक का टाइम और फेस्टिवल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा। 8 तारीख को, मतलब अगले रविवार को, हम लोग मनाने जा रहे हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा महामहोत्सव। तो व्यास पूजा 8 बजे वीडियो क्लास देंगे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, 9:15 बजे ब्रेकफास्ट प्रसादम, 10:15 बजे से व्यास पूजा ऑफरिंग शुरू होगी। 8 तारीख को, मतलब संडे के ही दिन, प्रेम संकीर्तन फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है जिसमें हिज ग्रेस पुरुषोत्तम प्रभु और टीम यहां आ रही है 4:30 बजे से, शाम को 4:30 बजे से 8 बजे तक ये प्रेम संकीर्तन फेस्टिवल भी है। हरे कृष्णा। ये जो व्यास पूजा है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, ये 75th व्यास पूजा महामहोत्सव है। तो ज्यादा से ज्यादा भक्तों ने इसका लाभ लेना है इसको अटेंड करके।
हरे कृष्णा। 14 सितंबर तक भाद्र पूर्णिमा कैंप चल रहा है। श्रीमद् भागवतम का उदय 14 सितंबर तक है। जो भी भक्त श्रीमद् भागवतम का ये वितरण में भाग लेना चाहते हैं, आउटसाइड जो नोटिस बोर्ड में नोटिस लगाया है श्रीमद् भागवतम के ऊपर विशेष प्राइस लिस्ट लगाया है, तो डिस्काउंट में श्रीमद् भागवतम अवेलेबल है। सभी भाषाओं में विशेष डिस्काउंट में श्रीमद् भागवतम अवेलेबल है। तो आप अपने खुद के लिए भी श्रीमद् भागवतम लीजिए और दूसरों को भी भागवतम का वितरण कीजिए। हरे कृष्णा।